बीबीसी इंडिया बोल तारीख 9 जून दिन शनिवार। मैं हूं वात्सल्य राय। कर्नाटक विधानसभा और यूपी के उपचुनाव में एकजुट विपक्ष ने रोका बीजेपी का रास्ता। क्या 2019 में काम करेगा विपक्षी एकजुटता का फॉर्मूला, या 2014 में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत दिलाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में भी दोहराएंगे कमाल? इंडिया बोल में आज इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1811 7001 पर। बतौर मेहमान चर्चा में शरीक होंगी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। मुंबई में हो रही भारी बारिश के बीच अधिकारियों ने लोगों से अपने घरों से ना निकलने के लिए कहा है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। स्कूलों से अपने दरवाजे खुले रखने के लिए कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर लोग यहां पनाह ले सकें। आपात स्थिति में राहत कार्य शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के बल तैयार खड़े हैं। साल 2005 में मुंबई और महाराष्ट्र में हुई मानसून की बारिश की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए थे। G7 समूह के नेता कनाडा के क्यूबेक में चल रही सम्मेलन के अंतिम दिन व्यापारिक नीतियों पर मतभेदों को समाप्त करने की कोशिशें कर रहे हैं। यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि चांसलर एंगेला मर्केल ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक विवादों के निपटारे के लिए एक युक्ति सुझाई है जिसमें करों को लेकर स्पष्ट आंकड़े तय करने की बात कही गई है, लेकिन कई और मुद्दों पर अधिकारी सहमत नहीं हो सके। राष्ट्रपति ट्रंप सम्मेलन के खत्म होने से पहले ही वापस लौट रहे हैं। ये तय नहीं है कि साझा बयान जारी किया जाएगा या नहीं। इस बार G7 सम्मेलन में अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापारिक समझौते और स्टील और एल्युमिनियम पर लगाया गया कर हावी रहा। प्रेस वार्ता में कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा,
Canada will not change its mind when it comes
स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए अवैध और बिल्कुल अनुचित टैक्स लगाए जाने पर कनाडा अपने विचार नहीं बदलेगा। स्टील और एल्युमिनियम सिर्फ कनाडा से ही नहीं जाता है बल्कि G7 के अन्य सहयोगी देश जो यहाँ हैं वो भी अमेरिका को स्टील और एल्युमिनियम भेजते हैं। अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान के ईद के मौके पर 3 दिन के संघर्ष विराम के ऐलान का स्वागत किया है। बीते 17 सालों से जारी युद्ध में ये पहली बार है जब तालिबान ने इस तरह का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने उम्मीद जाहिर की है कि इससे स्थायी शांति आ सकती है। 2 दिन पहले ही अफगान सरकार ने आगामी गुरुवार से अस्थायी संघर्ष विराम लागू करने का ऐलान किया था। तालिबान ने कहा है कि विदेशी बल इस संघर्ष विराम से बाहर रहेंगे और अगर अफगान तालिबान पर कोई हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले तालिबान के कई हमलों में 60 से अधिक सुरक्षा बल मारे गए हैं। तालिबान लड़ाकों ने उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदूज और सारेपूत प्रांतों, पश्चिम के हेरात और दक्षिण के कंधार प्रांत में हमले किए हैं। ये हमले शनिवार सुबह संघर्ष विराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही किए गए। सीरिया के कार्यकर्ताओं के मुताबिक देश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भीषण झड़पें हो रही हैं। तथाकथित इस्लामिक स्टेट अपने गढ़ रहे एक इलाके पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। स्थिति पर नजर रख रहे पर्यवेक्षकों के मुताबिक अलबू कमाल फिर से सरकारी सैन्य बलों के नियंत्रण में है। इससे पहले इस्लामिक स्टेट एक बड़ा हमला करते हुए शहर के भीतरी इलाकों में घुस गया था। आत्मघाती हमलों में दर्जनों सरकारी बल और उनके समर्थक लड़ाके मारे गए हैं। हाल के दिनों में सीरिया में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां बढ़ी हैं। पोप फ्रांसिस ने तेल कंपनियों के अधिकारियों के एक समूह से कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक अति महत्वपूर्ण चुनौती है और दुनिया को स्वच्छ ईंधन के विकल्प तलाशने होंगे। वेटिकन में 2 दिन चले सम्मेलन के अंत में बोलते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा है कि समाज को ऊर्जा की जरूरत है लेकिन इससे सभ्यता नष्ट नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि एक्सन मोबिल, बीपी, रॉयल डच शेल, इक्विनोर और मेक्सिको की पेमेक्स जैसी कंपनियों ने अपने प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भेजे थे। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। कर्नाटक विधानसभा और यूपी के उपचुनाव में एकजुट विपक्ष ने रोका बीजेपी का रास्ता। क्या 2019 में काम करेगा विपक्षी एकजुटता का फॉर्मूला, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में भी बीजेपी को दिलाएंगे बहुमत? इन सवालों पर इंडिया बोल में हो रही चर्चा में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं, 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन, स्वागत है आपका। स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको सुनवाते हैं कुछ आवाजें।
काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई का कमिटमेंट लेकर हमारी सरकार चल रही है, उसने किस तरह कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया है।
जो खेल वो हमारे लिए खेलते थे, जब विकास की बात हो रही थी तो वो सामाजिक बातें कहते थे। आप ही में से लोग कहते थे कि देखो बीजेपी की कितनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है, कितनी समझ है उनको डेमोग्राफी की।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी।
सारे के सारे लोगों को एक साथ 2014 में हरा कर हमारी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल हुए थे और 2019 में भी सफल हुए।
साल 2014 पीछे छूट गया है, बहुत पीछे छूट गया है। अब फोकस साल 2019 पर है और हर तरफ दावों का शोर सुनाई देने लगा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को शपथ ली थी। अगर अगले साल उसी हफ्ते में नई सरकार के गठन की बात हो तो अब करीब 11 महीने और 50 हफ्ते, और अगर दिन में बात करें तो करीब 350 दिन का वक्त बाकी है। फिलहाल बीजेपी का भारतीय राजनीति पर दबदबा किस कदर है, इसे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह अक्सर बयान करते हैं। उन्होंने कल जयपुर में क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं।
अब देश में सबसे ज्यादा विधायक कोई पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और देश में सबसे ज्यादा सांसद किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आज हिंदुस्तान का नक्शा उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 20-20 सरकारें देश के अनेक राज्यों की सेवा करने का काम कर रही हैं। देश का 70% भूभाग और 65% जनसंख्या, इसकी सेवा करने का सौभाग्य आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला।
अमित शाह और बीजेपी का भरोसा अपनी जगह है, लेकिन इस बीच कर्नाटक में गठबंधन की सरकार बनने और उपचुनाव में मिली जीत के बाद विपक्षी खेमा भी उत्साहित है। हम राधिका जी से दोनों पक्षों की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
जी सर, मैं एलपी गौतम, ग्राम कन्नौहा, पोस्ट ऑफिस अटरिया, तहसील सिरमौर, लहरी उमर प्रदेश से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
जी गौतम जी बताइए।
जी मुझे तो यह सर लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए या राजस्थान में उपचुनाव हुए और भाजपा की हार हुई है, तथा तो कर्नाटक में जो सर चुनाव हुए
जी,
उसमें जो पिछले जो विधायक थे पिछले विधानसभा में, उससे कहीं 2.5 से 3 गुना विधायक भारतीय जनता पार्टी के बढ़े हैं
जी,
तो उसमें ये तो कहा जा सकता कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है या 2019 के चुनाव में इनकी हार हुई। मैं जहां तक समीक्षा किया हूं और कर पा रहा हूं, तो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सशक्त कार्य किए हैं।
जी आप कहना चाह रहे हैं कि 2019 में उनकी डगर उतनी मुश्किल नहीं है जितनी बताई जा रही है, लेकिन राधिका जी मैं आपको यहाँ चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। विपक्ष जब एकजुट होता है तो एक उपचुनाव की बात नहीं है, कैराना की बात नहीं है या नूरपुर विधानसभा की बात नहीं है, इससे पहले गोरखपुर जो हार्टलैंड कही जाती है यूपी का और जहां से बीजेपी अपनी संभावनाओं को टटोलती है, वहां हार होती है, फूलपुर में हार होती है, और कर्नाटक में जो फॉर्मूला था उसको ब्रेकअप किया, सरकार बनाई गई, यानी विपक्ष एक मंच पर आ रहा है, बाद में हाथ उठाते हुए सारे नेता भी नजर आते हैं, ये तस्वीर कुछ बयान करती है क्या बीजेपी के लिए कुछ चिंता?
बिल्कुल, और बीजेपी वाले भी प्राइवेटली मानते हैं कि ये चिंता का विषय है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहाँ पे सपा रालडा और कांग्रेस एकजुट हुए हैं। बसपा का इन चुनावों में बहुत क्लियर नहीं था बसपा का क्या भूमिका था, लेकिन गोरखपुर और फूलपुर में बसपा ने भी अपील जारी की थी मायावती ने और उनके कार्डर भी काम किए, तो अगर सपा बसपा एकजुट हो जाए वो काफ़ी है बीजेपी को पीछे ढकेलने में, इसमें कोई बात नहीं, वो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो कास्ट कॉम्बिनेशन और जो केमिस्ट्री, खाली कास्ट कॉम्बिनेशन अरिथमेटिक से तो काम नहीं बनता, केमिस्ट्री भी होना चाहिए दोनों पार्टियों के बीच में, तो ये जो है ये गठबंधन जो है उसका प्रेशर नीचे से आ रहा है जमीन पे, ऐसे नहीं कि मायावती और अखिलेश जो भी हुए हैं अपनी वो इतिहास वगैरह भूल गए हैं, और
यानी कैडर कह रहा है कि आप
कैडर पे का प्रेशर बहुत जबरदस्त है, और जहां कैडर का प्रेशर है तो वहाँ पे गठबंधन जरूर सफल होगा, क्योंकि काडर अपने दिल जान से काम करेंगे, अगर काडर का दिल नहीं है वो नहीं काम करेंगे तो कहीं का नहीं रहेगा वो गठबंधन। जैसे अजीत सिंह, अब सर्वाइवल कहिए जो भी कहिए, लेकिन अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी इस कैराना और चुनाव में घर घर जाके वोट मांगा, और ये जो उनका जो नारा था गन्ना या जिन्ना वो बहुत खूबसूरती से पेश किया लोगों के सामने, तो उसका इम्पैक्ट तो जरूर हुआ, लेकिन बहुत बाधाएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि इतना इजी है ये विपक्ष का गठबंधन, क्या कांग्रेस अपने आप को पीछा कर लेगी?
बाधा क्या है उस पर बात करेंगे। एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, राधिका जी उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मैं जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से।
जी नाम बताइए अपना।
मेरा नाम सुरेश राव अम्बेडकर।
जी सुरेश जी क्या कहना है आपका?
हमारा यही कहना है कि विपक्ष का एकजुट तो बहुत सही है
जी,
लेकिन जो भी मोदी का काम तो जितने होते हैं कुल झूठे वायदे होते हैं
जी,
कहते कुछ करते कुछ है। अभी लोकसभा फूलपुर गोरखपुर में जब उन्होंने हार गए तो उन्होंने कहने लगे कि अरे उपचुनाव है
जी, कहना कुछ है करना कुछ है। सुरेश जी का एक और कहना, एक और श्रोता हमारे साथ है उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। आप सुन पा रहे हैं अगर मुझे तो?
हेलो
जी जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आप अपनी बात।
मैं नरेश सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम केसरीपुर ब्लॉक देवाई जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से।
जी नरेश जी क्या कहना है आपका?
ऐसा है साहब, जो विपक्ष का उपचुनाव में है कर्नाटक में गठबंधन हुआ है
जी,
ये कोई जरूरी नहीं कि उन्हें इस पे फाइट कर जाए, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा इतिहास है, मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह को बना, उनको सदन में जाने का मौका भी दिया है
इतिहास, वो सबको जानकारी है। नरेश जी आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। राजनीति में अपने पक्ष की जो मजबूती दिखाने की बात होती है तो कई बार इतिहास का जिक्र होता है और कई बार आंकड़े सामने रखे जाते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2014 के बाद से अब तक 27 लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं, इनमें से बीजेपी ने सिर्फ 5 सीटें जीती हैं। 27 में से 13 सीटें बीजेपी के पास थी, यानी बीजेपी ने 2014 के बाद से 8 सीटें अपनी गंवा दी हैं। अमित शाह की दलील है कि विपक्ष 8 सीटों पर बीजेपी की हार का जिक्र करता है, लेकिन इस बीच में 15 राज्यों में जो बीजेपी ने जीत हासिल की है, सरकारें बनाई हैं, उनकी बात नहीं होती। बीजेपी की दलील ये भी है कि उपचुनाव और आम चुनाव में फर्क होता है, तो किसके तर्क में आप ज्यादा दम देख रही हैं?
हाँ, मैं आई थिंक बीजेपी के तर्क में ज्यादा दम देख रही हूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में गुजरात और कर्नाटका का जो विधानसभा का चुनाव है वो काफी कवर किया है, और जगह जगह पे लोगों का यही कहना था कि हाँ ये छोटा चुनाव है, प्रदेश चुनाव है, तो हम जिसको चाहेंगे उनको वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या कर्नाटका में JDS हो, लेकिन जो बड़ा चुनाव आएगा 19 में, तब हमारी नज़र मोदी जी पे होगी। तो मेरा कहना है कि मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अभी तक 100% नहीं बट एटलीस्ट 90% तो कायम है।
आपका कहना है कि 2014 में जो लहर दिखती थी वो भले ही थमी हो लेकिन मोदी सबसे बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति में बने हुए हैं।
हाँ, लोग एक डिफरेंस कर रहे हैं ना कि प्रदेश के चुनाव में हम एक दिशा में वोट करेंगे और जो बड़ा 19 का चुनाव है उसमें एक दिशा में, क्योंकि हम एक स्थायी सरकार चाहते हैं, एक अच्छे लीडर चाहते हैं दिल्ली में। तो ये लोगों का कहना है, अब चुनाव आते आते क्या होगा मुझे नहीं मालूम
जी। तो लोगों के मन को गेज करना अभी मुश्किल है, लेकिन जो बात आती है कि चेहरा जब सामने होगा तो उपचुनाव जैसे नतीजे हो सकता है ना भी आए। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
सर, हम विजय कुमार यादव बोल रहे हैं बिहार से।
जी विजय जी, बताइए।
सर, मोदी जी तो बहुत झूठ का पुलिंदा बांध दिए
जी।
70% गरीब लोग एक हो गया है, मोदी जी का बढ़िया बिस्तर बनाना तो है मान लीजिए
जी। इनको लग रहा है कि बीजेपी की विदाई होगी। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, इनकी बात भी सुनते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
बोल रहा हूँ सर।
जी,
मोहम्मद शफी जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर।
जी मोहम्मद शफी साहब, अपनी बात रखिए।
शफी, हाँ जी सर, बात ये है कि क्या पिछड़ता है जब चिड़िया चुगी खेत। अब इनकी बारी एक ही है, ये जो मोदी सरकार किया, दूसरे बार जो है जो विपक्ष जो इसबे इख्तलाफ है वो गठी हो जाएगी और ये बिल्कुल हार जाएंगे, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हारने वाले हैं और दुनिया गठी हो जाएगी, पब्लिक भी गठी हो जाएगी, वोटर
जी। तो मोहम्मद शफी अपनी बात रख रहे थे कि वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर हम 2014 में वापस लौटते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आंकड़ों पर भी एक नज़र डालनी होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहां से कुल मिला के 225 लोकसभा की सीटें होती हैं, 2014 में मोदी लहर के सहारे बीजेपी ने 190 सीटें अपने नाम की। इस बार जो विपक्ष की कोशिश है इसी गणित को साधने की है, जो हार्टलैंड है जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 140, बिहार की माफ कीजिएगा 40 सीटें, यानी 120 सीटें, जहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ और आरजेडी की कोशिश है कांग्रेस और बाकी दलों को गठबंधन में लाने के लिए बिहार में। तो अगर ये गठबंधन मुकम्मल हो जाते हैं जैसे उपचुनावों में दिखे, तो क्या असर दिखेगा?
असर यही है कि बीजेपी का जो, मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रही हूँ, 50% कम हो सकता है, इससे नीचे भी गिर सकता है अगर यह गठबंधन अच्छी तरह निभाया जाए तो, खासकर उत्तर प्रदेश में। बिहार में तो अपने जगह में है ही है, और अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ जाते हैं, लालू जी और कांग्रेस वाले डिनर के दिक्कतों में एग्जैक्टली वो उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वो तो एक स्ट्रेट वे विनिंग कॉम्बिनेशन है। और लालू जी पे जब भी आक्रमण होता है, लीगल हो या उन्हें जेल भेज देते हैं, तो उनके प्रति जो सहानुभूति है, एक तरह से सहानुभूति लहर ही कह सकते हैं,
करता है, जो उपचुनावों में दिख रहा है बार-बार
फैक्टर काम कर रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक है तेजस्वी जिस ढंग से लीडरशिप दे रहे हैं, काफी मेच्योरली जा रहे हैं, अपना कदम ले रहे हैं।
तो यूपी में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी और बिहार में 31 सीटें जीती थी, यानी कुल मिला के 102 सीटें वहां से एनडीए के लिए आती हैं।
जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो दोहरा पाएंगे बिल्कुल। अगर मानिए ये गठबंधन भी नहीं होता सपा बसपा का, मानिए अगर कहते हैं कि अलग अलग लड़े, तो भी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को 73 सीट्स वापस मिलेगा उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो भी मिला था। खासकर मुझे बिहार में तो लग ही रहा है कि इनका ड्रॉप होने वाला ही है, और उत्तर प्रदेश में भी 73 सीट्स तो नहीं,
तो रिटेन करना बड़ा मुश्किल फिलहाल लग रहा है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राधिका जी, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हेलो
जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अपनी नाम, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
बासा प्रणाम
जी, नमस्कार।
मैं अनिल डोबराल, ब्रह्मचारी ग्राम बुरांची पोस्ट बांघाट वाया सतपुरी जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए अनिल जी।
हाँ भाई साहब, जो ये बीजेपी के संबंध में जो अभी गठबंधन सरकार के विषय में बोल रहे हैं कि मोदी जी दोबारा सत्ता में आएंगे
जी,
मोदी जी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो भी वादे किए थे वो वादे पे खड़े नहीं उतरे, केवल जुमलेबाजी में मोदी जी संलग्न रहे। जहां तक आपने उत्तराखंड सरकार की बात दोहरा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सत्ता में है, उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में कोई भी कार्य ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा
है। अनिल जी को लग रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है। एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं।
जी अपना नाम जी।
मानधाता जिला प्रतापगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ
जी।
सन 19 के इलेक्शन में
जी
मोदी जी दोबारा इनकी सत्ता आएगी, और इसलिए कि इन्होंने जो काम किया है गरीबों के लिए
जी,
और जैसे मेरा ही है कि मुद्रा लोन अगर ये इस योजना में मैं न शामिल हुआ होता तो आज मैं अब बेरोजगार रहता
जी। तो हमें इसी तरह की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भी मिल रही हैं, वहां कई कमेंट मिल रहे हैं, उनमें से कुछ को मैं पढ़ देता हूं। जगदीश उत्तावनी ने फेसबुक पर लिखा है कि मजबूत विपक्ष चाहिए, पर कोई नेता या मकसद भी तो हो, सिर्फ मोदी विरोध से ये संभव नहीं है। जुनैद अली लिखते हैं कि सत्ता के गलियारों में ये मान्यता रही है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। जिस प्रकार सभी उपचुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, उस आधार पर आगामी आम चुनाव में मोदी का काफिला दिल्ली से बहुत दूर ही दिखाई पड़ता है। आरिफ का आकलन है कि मोदी सत्ता में वापस आएंगे लेकिन सीटें कम होंगी, 200 के आसपास। नजीम नवाब की राय है कि विपक्ष एकजुट होते ही बिखर जाता है। शाह से एक लिखते हैं कि विपक्ष का सीधा फार्मूला है कि 2014 में 70% वोट मोदी के विरोध में पड़े थे, विपक्ष चाहता है कि विरोधी वोट न बटने पाए। तो राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा आप खुद कह रही थी, उपचुनाव की बात अलग है, क्या आम चुनाव में विपक्ष ऐसा फार्मूला कोई बना सकता है कि विरोधी वोट जो है वो न बटे?
बनाना ही पड़ेगा इसके लिए। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें तालमेल होने की बहुत ज़रूरत है एक तो।
लेकिन ऐसी संभावना आपको दिखती है, क्योंकि मायावती का बीच में बयान आ जाता है?
मैं तो यही कहती हूँ कि मायावती जो है अभी तक मैं कम से कम नहीं समझ पा रही हूँ कि उनकी क्या रवैया है। वो एकदम चुप रही है, कैराना और नूरपुर की जीत का एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया।
और जो बयान उनका सामने आता है वो ये है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो गठबंधन से अलग हो सकती हैं।
ऑलरेडी एक तरह से धमकी दे रही है, और ये पता नहीं उनका कुछ भय है क्या बीजेपी का कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मायावती नहीं शामिल होती तो विपक्ष का रास्ता कठिन ही होगा।
और विपक्ष का रास्ता अलग राज्यों में भी अगर आप देखें, कि क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल भी है जहां ममता बनर्जी हैं, जहां कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, कभी साथ लड़ती है, वामपंथी दल भी हैं। इसी तरह साउथ इंडिया में अगर आप जाते हैं तो जेडीएस और कांग्रेस साथ में चुनाव नहीं लड़े थे, बल्कि एक सीट पर सरकार बनने के बाद भी चुनाव हुआ, उसमें वो लोग अलग लड़े। इसी तरह एनसीपी और कांग्रेस विधानसभा का चुनाव साथ नहीं लड़े थे। तो बहुत मुश्किल है, डगर की जो पनघट की डगर है बड़ी मुश्किल है।
तो एनसीपी और कांग्रेस का तो मुझे लगता है लगभग तय हो गया है कि वो इकट्ठा लड़ेंगे। अब कर्नाटका का जिक्र की, कर्नाटका बड़ी ही दिलचस्पी है, वहाँ पे जो सरकार तो बना दिया है लेकिन क्या आफत है दिन पे दिन, कभी कांग्रेस के MLAs प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कभी कोई असंतुष्ट JDS में है। तो अब देखना पड़ेगा कि 19 तक ये कायम रहता है कि नहीं, और हो सकता है कि एक रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है कर्नाटका में कि भाई आप लोग सरकार में होके ऐसे लड़ाई झगड़ा आए दिन कांग्रेस के अंदर ही हो रहा है, तो क्यों ना बीजेपी को सेंटर में, हाँ सेंटर में बीजेपी का हाथ मजबूत करें।
जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम इनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मैं सत्येंद्र तिवारी बोल रहा हूँ बिहार से।
जी सत्येंद्र जी बताइए।
जो चर्चा चल रही है
जी,
पूरे देश में अन्न की बात, मैं किसान हूँ
जी,
और सारा कृषि का जो भी कहा जाए मेरी पूंजी भी डूब गई
जी।
हम लोग परेशान हैं, मोदी जी को 1.5 गुना का फायदा कराने की बात कर रहे थे। अरे भैया अब तो कोई खेत भी लेने वाला नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए।
जी सत्येंद्र जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं, हम इनकी बात भी सुन लेते हैं।
हम राम प्रवेश पासवान सीतामढ़ी से बोल रहे हैं सर, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से हैं।
जी बताइए
जी। मोदी जी का लहर है और कहते हैं अमित शाह जी का, अगर दोनों मिलकर अच्छा से चुनाव प्रचार करते हैं तो तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो चांस तो बिहार में रहेगा तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को और कांग्रेस
जी का। ये आपका अपना एक आकलन है कि उनका मौका रहेगा। किसानों की समस्या की बात की इससे पहले जो कॉलर थे सत्येंद्र जी, किसान एक बड़ा मुद्दा बना कैराना में भी, और किसान हो सकता है कि 2019 में भी एक बड़ा मुद्दा बने जाति से दलों से अलग होकर। क्या आपको लगता है कि मुद्दे में दम है इसीलिए कैराना हारते ही पैकेज की याद आती है सरकार को?
बिल्कुल नहीं, तो वरना तो पैकेज अनाउंस ही नहीं करते अगर वो उनको महसूस नहीं हुआ कि किसानों का मुद्दा इतना अहम है, इतना बड़ा हो हो जा रहा है। देखिए जो किसान का वोट है वो बहुत अहम वोट है, क्योंकि आज भी हर पार्टी को जो ग्रामीण वोट है उसी पे नज़र डालना पड़ता है। उसी के वजह से बीजेपी ने 2014 में भी कामयाबी हासिल की है, शहरी वोट नहीं रूरल वोट।
इसी के साथ एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसे बार बार कहा भी जाता है कि अमित शाह एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की रणनीति तैयार करने लगते हैं और बीजेपी को मोदी के करिश्मे पर भी बहुत भरोसा है, तो विपक्ष भी क्या उतनी तैयारी कर पा रहा है उस तरीके से जो मुकाबला कर पाए?
देखिए कांग्रेस अपनी ओर से राहुल गांधी वगैरह कैंपेन कर रहे हैं, जगह जगह जाके भाषण कर रहे हैं, मंदसौर में जाके किसानों से मिले थे, तो विपक्ष भी कर रही है। ऐसे नहीं कि विपक्ष कोई मौका छोड़ रही है। अखिलेश यादव ज़मीन पे आ गए हैं, मायावती तो खैर चुप है, अजीत सिंह भी एक्टिव हो गए हैं, तेजस्वी एक्टिव हैं, तो मैं साउथ में भी ये DMK वगैरह एक्टिव हैं अपने अपने क्षेत्र
तो
में।
विपक्ष के लिए क्या ज़रूरी होगा, जो बार बार कहा जाता है बीजेपी के पास मोदी हैं, विपक्ष के पास कौन, क्या एक विकल्प लेके उतरना ज़रूरी
नहीं
है?
नहीं विपक्ष रणनीति तौर से गलत करेगी अगर कोई फेस ढूंढने लगेगी। विपक्ष जैसा है वैसे होना चाहिए, क्योंकि जो फेस की बात आ गई तो लड़ाई झगड़ा पूरे
बहुत
तरह
मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हाँ। जी एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
सीताराम राय बोल रहे हैं, गाजीपुर उत्तर प्रदेश मक्सर।
जी सीताराम जी अपनी बात रखिए।
ऐसा है बात्सल्य भाई ना, कि ये जो भानुमती का कुबरा जो जोड़ा गया है सब वास्तव में जनता की भलाई के लिए एकजुट हो रहे हैं या अपनी अपना अस्तित्व संकट में पड़ गया है इसके लिए
एकजुट हो रहे हैं,
भी इसको देख रहे हैं हम लोग।
जी सीताराम जी का सवाल है। एक और श्रोता हमारे साथ हैं सीताराम जी, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी
हरीश कुमार।
जी हरीश जी,
जिला बरेली से बोल रहे हैं। सर मैं सर ये कह रहा हूँ, सारी मतलब मोदी ने सारे काम विकास के किए हैं और मोदी 2019 में जीतेंगे।
जी एक और श्रोता भी हमारे साथ हैं, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जैसा इन्होंने कहा कि एक भानुमती का कुनबा जोड़ा गया, ये पता नहीं चल रहा है कि क्या ये अपना फायदा देखना चाहते हैं या देश के चिंता है, तो इसका जवाब देना हमारे आपके लिए शायद आसान नहीं होगा।
नहीं, इनके इसीलिए तो कोई प्रोग्राम, जैसे किसानों का मुद्दा है, इस पे क्या स्टैंड है एकदम क्लियर करना चाहिए। इन्हें कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो घोषित करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग जैसे आपके श्रोता ने कहा सीरियसली नहीं लेंगे। लीडरशिप की इशू छोड़ दीजिए, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बहुत ज़रूरी है। उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा तमाम आर्थिक
एक फोरम पर आकर अपनी क्या बातें हैं वो जनता के सामने रखनी पड़ेगी। एक और श्रोता हमारे साथ राधिका जी हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
जी मैं जमील अहमद बोल रहा हूँ, राजागढ़ ताजपुर जिला बिजनौर यूपी से।
जी बताइए।
मेरा कहना ये है सर कि अगर यूपी बिहार हरियाणा जो हिंदी भाषी प्रदेश है, अगर महागठबंधन बन जाता है तो मोदी जी की सरकार दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है
जी,
और अल्पसंख्यक परेशान है।
जी एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं।
जी हम बिहार से बोल रहे हैं, जी कुशवाहा।
जी बताइए कुशवाहा साहब, क्या कहना है आपका?
मेरा कहना ये है कि मोदी जी का तो परफॉर्मेंस जो है बहुत ठीक ठाक है
जी,
दोबारा वो सत्ता में आएंगे
जी,
लेकिन जो हकीकत में जो काम हो रहा है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा।
अच्छा धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहा। राधिका जी अभी जितने भी हमने श्रोताओं से बात की, क्योंकि इंडिया बोल जो है श्रोताओं का मंच है, आधे लोग कह रहे हैं कि काम दिख रहा है, आधे लोग कह रहे हैं काम नहीं दिखेगा, लगभग यही लोगों की राय है। लेकिन राजनीति में एक साल का जो वक्त होता है बड़ा लंबा अरसा होता है, बीच में तीन अहम चुनाव भी होने हैं, तो क्या कभी अभी 2019 के लिए कोई तस्वीर बनती निकलती दिखाई दे रही है या तीन राज्यों के चुनाव के बाद?
मैं भी बिल्कुल सहमत हूं आपसे, मैं भी जगह जगह झुकी झोपड़ियों में जाती हूं अक्सर, तो ओपिनियन तो बिल्कुल बटा हुआ है, आप 50% इस तरफ 50% उस तरफ, तो ये हम नहीं कह सकते कि भाजपा रेस से बाहर है, बिल्कुल नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष की कोई फ्यूचर नहीं है, विपक्ष का भी फ्यूचर है। अब हमें देखना होगा कि दोनों साइड किस तरह से तैयारी करते हैं, पर मुझे लगता है कि बीजेपी एज यूजुअल थोड़ा आगे है, तैयारी के पैमाने पर, क्योंकि उन्हें RSS और अनेक संस्थाओं से फीडबैक भी मिलता है घड़ी घड़ी से क्या सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने आइवरी टावर में रहते हैं जितना लोग समझते हैं। तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो होगा ही होगा
जी।
अब लोग क्रेडिबिलिटी होगी या नहीं वो देखना पड़ेगा
जी। बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राधिका जी आपका, और उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे माफी। स्टूडियो का संचालन किया दीपक जसरोटिया ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया अनंत प्रकाश ने। अगले सप्ताह फिर किसी प्रमुख विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। फिलहाल वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।